झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए चाहे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله
السلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے بچوں بچوں کی ٹریننگ کے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم اس عنوان پر کچھ سیکھیں گے کسی کو تکلیف مت دیجئے پیارے پیارے بچوں اگر کبھی کسی کو تکلیف ہو جائے ہماری ذات سے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے یعنی سوری کر دینا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ تو سوالات کریں گے ماشاءاللہ
پانچ بچے ایک دوسرے کو الو اور بے وقوف ایسے جملے کہتے ہیں ایسا کرنا کیسا
نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور اس طرح کہنے سے اس کا دل دکھے گا اس کو تکلیف ہوگی ہمارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایذا دینا ہے اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعاً حرام یہ ظاہر سے الو تو کوئی بولا الو کا پٹھا بے احمق اور بے وقوف اور پاگل اس طرح کے الفاظ کہتے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے اسے دل دکھے گا اور مسلمان کو تکلیف پہنچے گی چھوٹے کو بھی نہیں کہنا چاہیے بڑے کو بھی نہیں کہنا چاہیے ان الفاظ سے پکارنا چاہیے جو جائز بھی ہوں اور اس کو سامنے والے کو اچھے بھی لگتے ہوں
یعنی باپا جان اسکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے غلط نام لے کے پکارتے ہیں جیسے مارنا کچھ اور بنتا ہے یہ کہتے ہیں اس کا مارنا یہ بنتا ہے غلط بنتا ہے مارنا مثلا جیسے ایک بچے کا نام جیسے عاشق علی ہے تو اس کو عاشق پیزا عاشق برگر ایسے کہتے رہتے ہیں یہ بھی
عاشق برگر
جی ایسے کرتے رہتے ہیں اسکولز میں ہوتا ہے ایسا استاد صاحب پہلے مذاق میں کہہ کے جاتے ہیں پھر بچے پھر
اچھا استاد صاحب خود ہی کہتے ہیں اب تو آپ کی خیر نہیں ہے ہاں استاد کہتے ہوں گے بے چپ الو کا پٹھا گئی کا اب اس کا پڑ گیا نام الو کا پٹھا اب یہ الو کا پٹھا کیا ہوتا ہے مانا آئے یا نہ آئے نام پتا چل گیا الو کا پٹھا مانے پٹھا بچے کو بولتے الو کا بچہ تو یہ استادوں کو بھی چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جس سے بچے کا نام پڑ جائے استاد اگر بولے گا یا باجی بولے گی ایسا کمزور نام گھٹیا نام یہ بچے کا پڑ جائے گا آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا آپ ہوں گے قیامت ہوگی قبر ہوگی اس طرح بچے کا نام اگر بگڑ گیا یہ عمر بھر بیچارہ آپ کو یاد کرتا رہے گا بھلائی سے یاد نہیں کرے گا کہ میری باجی نے یا میرے استاد نے میرا نام اس طرح بگاڑ دیا میرا نام اس طرح ڈلوا دیا تو ان کو بھی چاہیے کہ ایسے الفاظ بچوں کے ساتھ نہ کریں بچوں کی ایسے الفاظ کہیں کہ جس سے بچوں کا دل خوش ہو ٹھیک ہے اس نے کوئی کوتاہی کی ہے غلطی کی ہے لیکن سب کے سامنے اس طرح کے الفاظ کہیں گے اس کا نام پڑ جائے تو یہ بیچارہ کتنا تکلیف میں آ جائے گا ماں باپ کو بھی اس سے تکلیف ہوگی تو کوئی کسی کو تکلیف نہ دے تو اگر کسی استاد نے کہہ بھی دیا اوئے بے وقوف تو پھر دوسروں کو इसकी फिर भी इजाजत तो नहीं मिलेगी ना कि ओए बेवकूफ कहकर उसको पुकारे, कि बाजू का उस्ताद कह देता है लेकिन बच्चों को इससे ये नहीं कहना है। जैसे बाप है, बड़े आपके बड़े भाई को डांटे तो आप बोलो कि बाप ने भी तो डांटा इसको, आप भी डांटो इसको, तो वो तो उठा के हो सकता है आपको हाथ रख देगा बड़ा भाई, तो अगर बाप ने डांटा तो यूं सुन रहा था, मैंने डांटा तो यूं किया, तो जहर है कि वो बाप है, आप छोटे भाई हैं, तो इसलिए वो हर एक का अपना अपना मनसब, अपनी अपनी मंजिल होती है। तो बहरहाल किसी का भी इस तरह के बुरे नाम से उसको ना पुकारे जिससे उसको ईजा होती है। इसी तरह ओ लंबू, ओ ठिंगू, ओ मोटू, ये भी तो करते होंगे, ये तो कुरान करीम में है ना, वला तनावजु बिल अलकाब, और बुरे लकब से मत पुकारो। तो ये इसमें मिसाल जो है तफसीर में लंबू ठिंगू इस तरह की मिसाल है। तो ये बुरे नाम किसी के रखना जो है, बुरे लकब रखना, ये शरण गुना है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। भले वो लंबा है तब भी किसी को लंबू कहेंगे तो बुरा तो लगेगा, किसी का वजन ज्यादा है उसको ओए मोटा, तो बुरा तो लगेगा ना, उसको दिल तो दुखेगा, कोई आंखों में रोशनी नहीं है, नबीना है उसको, ओए अंधे, बुरा तो लगेगा। तो इसलिए वो भले वो ऐसा है तब भी हमको ऐसा नहीं कहना, या जैसा बनाया अल्लाह ने वैसा है बेचारा, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे वो ऐब हम में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरे को सताएं और दिल दुखाएं। तो किसी को तकलीफ ना दीजिए।
कभी कभी जानवरों का नाम पुकारते हैं,
हाँ ओए गधे, यूं भी बोलते हैं ना, हाँ नहीं ये भी बुरी बात है, ये इससे भी दिल दुखेगा किसी को, गधा बोलेंगे या जिस जिसका कद बड़ा है, ऊंट, ऊंट लंबा होता है ना, तो इस तरह ये भी जाहिर के उसका दिल दुखाने वाली बात है और तकलीफ देने वाली बात है। किसी को तकलीफ मत दीजिए, ऐसा किया है तो तौबा भी करें और जिसका दिल दुखा उसे माफी भी मांगे। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम अमीर हमजा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि बाज बच्चे अपने उस्ताद को भी तंग करते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ फरमा दें।
हाँ, उस्ताद को तंग करना, जो दीनी उस्ताद है ना वो तो रूहानी बाप का दर्जा रखता है, वो तो एक तरह से मतलब समझो अपने बाप से भी वो ज्यादा दर्जा रखता है। तफसीर कबीर में उस्ताद अपने शागिर्द के हक में माँ बाप से बढ़कर शफीक होता है, ना शफकत करने वाला होता है, क्योंकि वालिदैन इसे दुनिया की आग और मुसीबतों से बचाते हैं, जबकि ये दीनी उस्ताद जो होते हैं ये उससे जहन्नम की आग और आखिरत की मुसीबतों से बचाते हैं, आखिरत की मुसीबतों से बचाते हैं। तो ये उस्ताद जो होता है इसका बड़ा मर्तबा होता है। बाद लोग उस्ताद के भी नाम रखते हैं उल्टे सीधे, बच्चे जो हैं उल्टे सीधे नाम रखते हैं, पीछे से उसके चाले निकालते हैं, उसके अंदाज जो समझाने को होता उसकी नकल उतारते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर गीबत करते हैं उस्ताद की, तोहमत रखेंगे, जैसे उस्ताद ने कोई सवाल किया तो बोलेंगे पीछे से कि उस्ताद को आता नहीं है ना, इसलिए ये रोब मार रहे थे और अपने को सवाल कर रहे थे ताकि उस्ताद को पता चल जाए इसके माना क्या है, या फुला चीज का ऐसा, नऊजु बिल्लाह, ऐसी बदगुमानियां नहीं करनी चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतह रज़विया वॉल्यूम 23 के पेज नंबर 639 पर लिखते हैं, उलमा फरमाते हैं जिससे उसके उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा पहुंची, तकलीफ पहुंची, वो इल्म की बरकत से महरूम रहेगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद हमजा अत्तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बच्चे और किस किस तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं, आप इसकी कुछ और भी मिसालें फरमा दें ताकि हम उनसे भी बच सकें।
ये तकलीफ पहुंचाने की तो हर कौम में अलग अलग अंदाज होते होंगे, हर मुल्क में, शहर में, स्कूलों में तरह तरह के अंदाज होते होंगे कि बच्चे एक दूसरे को भी तकलीफ पहुंचाते होंगे, मोहल्ले में पहुंचाते होंगे, घर में पहुंचाते होंगे। अब मिसाल के तौर पर कोई बेचारे बूढ़े गुजर रहे होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग उनकी आवाजें उन पे आवाजें लगाते हैं। अच्छा ये बचपन में भी हमने देखा है। अच्छा उनकी नकलें उतारेंगे, वो जिस तरह चल रहा है कोई माजूर है तो उसकी तरह ये भी माजूर बन के चलेंगे। किसी की आवाज में कोई खराबी है तो उसकी तरह आवाज निकालेंगे, तो ये सब गलत तरीके हैं। इसी तरह किसी जगह पर कब्जा कर लेंगे वो बिल्कुल फेल के बैठ जाएंगे, या गली में कोई कार खड़ी है या जीप है या नई गाड़ी है तो उस पर वो स्क्रेच लगा देंगे, किसी नोकदार चीज से निशाना डाल दिए, अब कितना बड़ा नुकसान उसका बेचारे हो गया। छुट्टी के दिन से पहले वाली रात जो है गली महल्ले को मैदान समझ के क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलकर शोर मचाकर भी मोहल्ले वालों को तंग करते हैं। जैसे इतवार छुट्टी होती है तो सैटरडे नाइट जो आती है तो उसमें वो गुल गपाड़ा मोहल्लों में बाज लड़के कर रहे होते हैं, घर वाले पड़ोस वाले बेचारे परेशान। इसी तरह नमाजी या सोने वाले के पास बुलंद आवाज से बातें करना, ये केले या पपीते वगैरह के छिलके रास्तों में फेंक देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, मस्जिद में अगर गए तो वहां भी शोर मचाना, ये सब दर तकलीफों के काम है। मस्जिद में शोर मचाना तो मस्जिद की भी बेहुरमती और बेअदबी है। इन सबसे और ऐसी और बहुत सारी तकलीफें होती है, जो समझदार होता है वो समझ लेता है कि मैं ये जो करने लगा हूं इससे दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांग ले, तो माफी कर ले।
दापा जान जैसा कि ये होता है कि जब छुट्टी होती है तो जब हम सीढ़ियों से उतार होते तो बच्चे इतनी जोर जोर से धक्का देते कि बच्चे गिर जाते, कभी कभार तो बासों का तो उनका सर भी फट जाता है। हाँ, या उनकी हड्डी टूट जाती है।
हाँ, ये भी खतरनाक है, धक्के देना खतरनाक है, इस तरह वो बच्चा गिर सकता है और कुछ चोटें आ सकती हैं, तो ये भी तकलीफ देने वाली सूरत है। बल्कि नमाज में सब बच्चों की सफ होती है, उसमें भी बाजू से शरारती बच्चे होते हैं, इधर धक्का मारेंगे पूरी सब गिरा देंगे, इधर धक्का मारेंगे इधर सब गिरा देंगे, इस तरह हरकतें बच्चे नमाजों में तरावी में खासकर, तो ऐसे बाप या जो भी बड़ा भाई लाया बच्चों को तो वो ना लाया करें। अम्मी भी गौर करें, बच्चों को ये समझते हैं कि ये तरावी के लिए जाएगा तो नेक बन के आएगा, नहीं नहीं उल्टा नेक लोगों को तकलीफें देकर आएगा, अभी इतना समझदार नहीं है ना ये, तो इसलिए वो या थोड़ा बहुत समझदार भी है ना, दूसरे बच्चे जब होते हैं ना तो ये बेचारा भूल जाता है, उनके साथ भाग दौड़ में लग जाता है, शरारतों में लग जाता है, तो बच्चों को तो इस तरह की चीजों से बचाना चाहिए। बल्कि अगर पता है कि बच्चा मस्जिद में शरारतें करेगा, शोर मचाएगा और तकलीफें देगा, तब तो ले जाने वाला भी गुनाहगार है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अल सुन्नत, अब तो बज़ाहिर तरावी वगैरह में ऐसा भी होता है कि बच्चे नमाज में बातें कर रहे होते हैं रुकू सजदे में, और एक मखसूस ग्रुप भी बन जाता है, अब तो दोस्त बन गए कि रुकू जैसे ही होगा वैसे ही एक दूसरे को धक्के देके रुकू में घुसने की कोशिश है, किसी की रकात निकल जाती है, किसी को मिल जाती है, ऐसा ही होता है।
हाँ, ये नहीं करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। सल्लल्लाहु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला
अमीर अहल सुन्नत, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब नमाज का टाइम होता है स्कूल में तो बच्चे एक दूसरे को जूते मार रहे होते हैं और किसी के कपड़े खराब हो जाते हैं।
तोबा तोबा, ये भी तकलीफ देने वाले काम है, ये भी नहीं करना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जूते यानी शूज पहनने के ताल्लुक से कुछ सुन्नत और आदाब अर्ज करता हूँ। जूते पहनना अच्छा है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत भी है। और जूते को नाल बोलते हैं, नालेन शरीफ, तो मेरे सर पे जो नालेन शरीफ का नक्श आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जूता शरीफ, नालेन शरीफ, नाल अरबी में बोलते हैं, नाल और दो नाल हो तो नाल लाइन, ठीक है ना, तो ये मैंने बरकत के लिए लगाई हुई है। तो ये आका की सुन्नत है जूते पहनना, और जूते पहनने से कंकर कांटे वगैरह पाँव में लगते नहीं है, हिफाजत रहती है, और सर्दियों में पाँव इससे महफूज रहते हैं, और गर्मियों में धूप में चलने के लिए आसानी होती है, नहीं तो पाँव जलेंगे। बाजों का दिया कि अगर जूते नहीं होंगे, किसी ने जल्दी सिगरेट फेंकी हुई है उस पे पाँव आ जाएगा तो पाँव जल जाएंगे, ये भी होगा। तो बारह लेके जूते तो पहनने चाहिए, वरना पाँव मेले मेले गंदे गंदे हो जाते हैं, और इससे मतलब घर में जाएंगे चादर पे पाँव रखेंगे तो उधर धब्बा पड़ेगा। तो जूते पहनने के लिए पहले तुझे नियतें हो जाए तो अच्छा है कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसलिए मैं ये जूते पहन रहा हूँ, और सीधे पाँव में जूता दाखिल करना ये भी सुन्नत है। तो पहले पहनते वक्त पहले सीधे पाँव में पहने, राइट स्टेप जो है उसमें वो शू में दाखिल करें, और उतारने में पहले उल्टे से उतारें, लेफ्ट से पहले पहनना राइट से सुन्नत, और उतारते वक्त लेफ्ट से उतारना ये सुन्नत। लेकिन ये है कि जूते पहनने से पहले ना इसको थोड़ा यानी कि यूं झाड़ लिया जाए, जिससे ये है ना यूं करके यूं, ताकि इसमें अगर कोई कीड़ा कोई कंकरी कोई चीज ऐसी है तो वो तकलीफ ना दे। वो कहीं पढ़ा था मैंने कि कोई वो दावत में लोग थे और जूते वगैरह उतारे होंगे, तो फिर वापसी में वो जूता झाड़े बगैर किसी ने वो पहन लिया तो उसके पाँव में कोई चीज चुभी तो जख्मी हो गया पाँव। उसे निकाला देखा तो जूते में वो खाते हुए लोग खाना खा रहे हैं तो किसी ने हड्डी फेंकी थी, वो हड्डी उसके जूते में घुस गई थी, इससे उसका पाँव जख्मी हो गया। तो अगर वो इसको यूं झाड़ लेते ना तो वो हड्डी निकल आती और पाँव जख्मी ना होता। तो यूं बारह लेके एहतियातें अच्छी अच्छी होती है। इसी तरह जो जूते इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो उल्टे पड़े हैं तो सीधे कर देने चाहिए, वरना ये कि इससे वो रोजी में तंगी आती है। चले आइए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जूते किस तरह पहनने।
तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल।
किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, दूसरों को देखने की दावत भी देते रहिए कि देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसी माशाल्लाह यानी कि सुन्नतें सीखते हैं और बताते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं आता वो जानते भी हैं इसको सीखते भी हैं। तो ये बच्चों के लिए भी मुफीद है और बच्चों के अम्मी अब्बू के लिए भी किड्स मदनी चैनल देखना मुफीद है, फायदेमंद है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद।
क्यों नहीं